चले शहर की ओर, जब चले शहर की ओर। नमस्ते और वेलकम। हमारे प्रोग्राम जब चले शहर की ओर में आप सभी का स्वागत है।
ला 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 ला।
आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो अंजलि।
बात ही खुशी की है, मेरे भाई की नौकरी जो लग गई है और वो भी मुंबई में।
अरे वाह।
मगर नरेन, पिताजी थोड़ा सा नाखुश हैं।
वो क्यों?
वो ऐसा है ना कि वो चाहते थे कि भैया अपना ही कोई बिजनेस करें, मगर तुम्हें तो पता है बिजनेस में जहाँ मुनाफा है वहाँ नुकसान भी तो है ना।
हाँ बिल्कुल। अब जैसे हमारे धारावाहिक शहर की ओर में चंदर अपनी दुकान खोलने की कोशिश में है, पता नहीं कहाँ से पूंजी का बंदोबस्त करेगा।
तो सुने हमारे धारावाहिक शहर की ओर की आज की कड़ी।
माँ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
हाँ बोल।
वो क्या है कि घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा है।
तो तू अब क्या चाहता है?
नहीं बस मैं ये कह रहा था कि अगर गांव में एक परचून की दुकान खोल लेते तो।
रहने दे। घर में खाने के लिए पैसे तो है नहीं और तू दुकान खोलने की बात कर रहा है। अरे पता है दुकान खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं?
वो मुझे सब पता है माँ, और तू पैसों की चिंता मत कर, उसका इंतजाम तू मुझ पर छोड़ दे। बस तू मुझे दुकान खोलने की इजाजत दे दे।
अगर दुकान खोलने के लिए पैसों का इंतजाम कर सकता है तो खोल ले दुकान, मुझे क्या परेशानी है।
ओ माँ, तूने मेरा काम आसान कर दिया। बस अब तू बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और देख कैसे मैं इस घर के दिन बदल देता हूँ।
हे भगवती सुरकंडा, तू दयनीय हो जा, तू ही हमारे अच्छे दिन ला सकती है। और अगर मेरे बेटे का कहीं कोई काम धंधा चल गया तो मैं नंगे पाँव तेरे दर्शनों के लिए आऊंगी और 5.25 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाऊंगी। बस माँ तू दयनीय हो जा।
पानी,
ये लीजिए पानी।
ओह, मेरा सिर इतना भारी क्यों हो रहा है? मुझे क्या हुआ था मीरा?
कुछ नहीं हुआ था आपको, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे। आप आराम कीजिए, मैं आपका सर दबा देती हूँ।
मुझे चक्कर नहीं आया था, शायद कल मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी।
ऐसा कुछ नहीं है
मीरा, मैं पीने के बाद हैवान बन जाता हूँ, है ना?
नहीं, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं?
मीरा मुझे मालूम है मैं बहुत बुरा हूँ।
नहीं, आपसे ऐसा किसने कहा? आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, बस आप पीना छोड़ दीजिए, फिर देखिए आप कितने अच्छे हैं। और फिर तो आप यहाँ रहकर भी अच्छे पैसे कमा सकेंगे और शहर जाकर भी जैसे पहले कमाते थे।
नहीं, मैं शहर जाकर पैसा नहीं कमाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है शहर जाकर पैसा कमाना आसान है? मैं शहर नहीं जाऊंगा, मैं कभी शहर नहीं जाऊंगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से।
अरे वाह, कितनी सुंदर साड़ी है और इसका तो काम भी बहुत सुंदर है।
ये मेरे मामा जी ने दी थी। ये देखिए दीदी, गले का हार, ये कैसा है?
बहुत सुंदर है।
मेरी माँ ने बनवाया था पर इसका डिजाइन मैंने पसंद किया था।
कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना ही होगा अब।
अरे आप कब आ गए?
जब तुम अपने जेवर भौजी को दिखा रही थी तब।
अच्छा मधु, मैं चलती हूँ, तुम दोनों बैठ के बातें करो। और वैसे भी तुम पति पत्नी के बीच में मैं क्यों हड्डी बनूं?
आप भी दीदी। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ।
नहीं मधु, अभी भूख नहीं है। वैसे जरा तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।
ऐसी क्या खास बात है?
दरअसल बात क्या है ना मधु।
बताइए क्या बात है?
वो मैं परचून की दुकान खोलने जा रहा हूँ।
अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ दुकान के काम में हाथ बटाऊंगी।
दरअसल मुझे उसके लिए पैसों की जरूरत है।
तो
अब तुम्हें घर के हालात तो मालूम ही है, घर से तो कोई मदद मिल नहीं पाएगी।
हाँ
तो मैं ये चाहता था कि अगर तुम्हारे जेवर गिरवी रखकर।
मेरे जेवर?
मधु मेरी बात सुनो,
वो जेवर मेरे परिवार की निशानी है, मैं उन्हें नहीं दूंगी।
मेरे कहने का वो मतलब नहीं है।
मैं सब समझ रही हूँ आपके मतलब को, मैंने कह दिया ना मैं अपने जेवर नहीं दूंगी।
मैं इन्हें बेच थोड़ी ना रहा हूँ, बस गिरवी रख रहा हूँ। जब दुकान चल जाएगी तो मैं कर्ज के पैसे चुका कर इन्हें छुड़ा लूंगा। और देखना, एक बार मेरी दुकान चल जाए मैं तुम्हें ऐसे कई सुंदर सुंदर जेवर लाकर अपने हाथों से पहनाऊंगा।
बेचने और गिरवी रखने में ज्यादा फर्क नहीं है, और अगर आप पैसे ना चुका पाए मेरे तो सारे जेवर ही चले जाएंगे।
मधु, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है?
भरोसा तो है, लेकिन मेरे पास दे देकर घर के कुछ ही जेवर तो हैं, इन्हें भी ले जाकर तुम साहूकार के पास रख दोगे?
मधु, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे सारे जेवर जल्द से जल्द छुड़ाकर साहूकार से ले आऊंगा।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो?
तो तुम जैसा कहोगी मैं हमेशा वैसा ही करूंगा।
नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने जेवर।
ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो रखो अपने इन जेवरों को अपने पास, मैं कुछ और इंतजाम देखता हूँ। क्या हुआ अगर पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो? ज्यादा से ज्यादा दुकान ही तो नहीं खुलेगी, इस घर की हालत में सुधार ही तो नहीं होगा, हमारी गरीबी के दिन ही तो नहीं खत्म होंगे। लेकिन तुम तो खुश रहोगी क्योंकि तुम्हारे जेवर तुम्हारे पास है।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
तो फिर क्या बात है मधु, तुम्हें तो मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है।
ठीक है, ये लीजिए जेवर, लेकिन एक बात बता देती हूँ, मुझे मेरे जेवर हर हाल में वापस चाहिए।
तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जेवर जल्द ही साहूकार से छुड़ा लाऊंगा।
अरे चंदर, तू बैठ।
उमेश।
हाँ?
मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है।
कैसा डर?
अरे यार, यही कि अगर दुकान नहीं चली और सारे पैसे डूब गए तो घर पर माँ को मधु को क्या जवाब दूंगा।
अरे तू ऐसा सोचता ही क्यों है यार कि नहीं चलेगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि दुकान बहुत अच्छी चले और तेरी किस्मत बदल दे।
हाँ, हो तो सकता है।
अच्छा तू ये बता पहले कि तूने दुकान के लिए पैसों का इंतजाम किया या नहीं?
इंतजाम क्या, मधु को जैसे तैसे उसके जेवर देने के लिए मनाया है, उन्हीं को साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले लूंगा ताकि जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सकूं।
ठीक है चल। इस फोन को भी अभी आना था। हेलो, कौन बोल रहा है?
मैं लक्ष्मी ट्रेवल्स का मैनेजर बोल रहा हूँ, मंगत भाई।
हाँ जी साहब जी। हाँ, कैसे याद किया साहब?
उमेश, तुम्हारी छुट्टियाँ खत्म हो चुकी है ना? हाँ। और तुम अभी तक काम पर नहीं आए हो?
वो साहब जी, मैं अभी 5 या 7 दिन के बाद आ पाऊंगा।
ये कंपनी तुम्हारी मर्जी से नहीं चलती है, अगर काम करना है तो कल आ जाना, नहीं तो हम किसी और को रख लेंगे, समझ गए?
तो ठीक है साहब जी, जैसी आपकी मर्जी, कोई और मिलता है तो किसी और को रख लो, वैसे भी उमेश किसी की गुलामी करना पसंद नहीं करता। हाँ।
उमेश, तुमने इतनी अच्छी नौकरी को लात मार दी।
अरे छोड़ना यार, ये छोटी मोटी नौकरियों से उमेश का गुजारा नहीं होता, और वैसे भी चंबा में अपना लॉज का काम मस्त चल रहा है, टूरिस्ट आते हैं लॉज में रहते हैं, किराया देते हैं। अरे तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की गुलामी करता फिरूं, एक सीजन में ही 4-4 महीने का इंतज़ाम हो जाता है।
अच्छा,
अब चलें या यहीं खड़े रहने का इरादा है तेरा?
हाँ चलते।
सेठ जी नमस्ते।
नमस्ते उमेश बेटा, आओ आओ, कैसे हो?
नमस्ते सेठ जी।
अरे चंदर बेटा, तुम भी आयो, आओ आओ, बैठो बैठो। और कैसे हो बेटा, और घर पर सब कैसे?
जी ठीक हूँ, और घर पर भी सब ठीक है।
सेठ जी, वो दरअसल चंदर दुकान शुरू करना चाहता है और उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर बेटा मैं भी यहाँ धंधा करता हूँ और इसका भी कुछ उसूल है, बिना कुछ लिए तो मैं कुछ देता नहीं।
अब जी मैं लाया हूँ ना ये जेवर।
अरे अरे, फिर तो क्या बात, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए?
आप इनके कितने पैसे दे सकते हैं?
पहले जांच लूँ सोना असली है या नहीं, आजकल भरोसा नहीं है लोगों का।
जांच लीजिए, जांच लीजिए, अच्छी तरह जांच लीजिए।
हाँ सोना तो खरा है। अच्छा तो बताओ बेटा कितने पैसे चाहिए?
सेठ जी मुझे 15,000 रुपए की जरूरत है।
भाई 15,000 तो मैं इसके नहीं दे सकता, इसके तो मैं 9,000 ही रुपए दे सकता हूँ, और ब्याज साल का 21% लूंगा।
सेठ जी ये ब्याज तो बहुत ज्यादा है।
अगर ऐसी बात है तो तुम इसे किसी और के पास ले जाओ, मैं ब्याज इससे रत्ती भर भी कम नहीं लूंगा।
लेकिन सेठ जी फिर भी आपके ये पैसे मैं 6 महीने में ही लौटा दूंगा, कुछ तो ख्याल कीजिए।
अब बात होती 1-2 महीने की तो मैं कुछ करता भी, अब 6 महीने तो बहुत होते, और मैं ठहरा साहूकार आदमी, भाई पैसे से ही पैसा कमाता हूँ, अब मेरा पैसा तो 6 महीने के लिए चला गया ना।
अरे सेठ जी, आपसदारी का भी तो थोड़ा बहुत लिहाज कीजिए ना।
ठीक है बेटा, तुम इतना ही कह रहे हो तो 18% साल का देना होगा। अब इससे कम करने के लिए मुझसे मत कहना।
ठीक है सेठ जी, क्यों चंदर ठीक है?
हाँ हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये पैसे तो बहुत कम है यार।
अभी जो मिलता है वो ले ले, एक बार दुकान तो शुरू हो जाने दे यार।
तो ठीक है सेठ जी, दे दीजिए।
तो ये हुई ना बात।
ये लीजिए सेठ जी।
लाओ, और ये लो बेटा, गिन लो, पूरे 9,000 हैं, एक एक नोट 1,000 का है।
जी, लेकिन सेठ जी कहीं दस्तखत?
अरे बेटा, दस्तखत की क्या जरूरत, तुम कौन सा कहीं भागे जा रहे हो, मैं भी यहीं बैठा हूँ और तुम भी यहीं, वैसे भी उमेश है ना।
जी, जैसा आप ठीक समझे सेठ जी।
अच्छा सेठ जी, आप चलते हैं, नमस्कार।
नमस्कार।
नमस्कार सेठ जी।
अब बता चंदर, और मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ?
उमेश, अब बस एक अच्छी सी दुकान और मिल जाए तो।
तू उसकी फिक्र मत कर, मेरे एक चाचा हैं, उनकी दुकान खाली पड़ी है। सबसे अच्छी बात यह है कि दुकान सड़क के बिल्कुल नज़दीक है। कल मैं चलकर तेरी उनसे बात करवा देता हूँ।
सच उमेश, तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा।
एहसान के बारे में बाद में सोचना, अभी फिलहाल दुकान के बारे में सोच।
तो सुना दोस्तों आपने, चंदर कैसे दुकान के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा है,
कैसे वो दुकान खोलने के लिए अपनी पत्नी के जेवर तक गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाता है,
और कैसे वो साहूकार के चंगुल में फंस रहा है।
अच्छा नरेन, वैसे मैं एक बात पूछूं?
हाँ पूछो।
पहाड़ों में लोगों के पास नौकरी के अलावा रोजगार के और कौन कौन से साधन हो सकते हैं?
अंजलि, ये सब जानने के लिए बात करते हैं मनोज नाकोटी जी से, जिनकी संस्था हाई फीड उत्तराखंड में आजीविका पर काम कर रही है।
रोजगार के साधनों, आम रोजगार के साधनों के अलावा उत्तराखंड में जैसे आज की डेट में बहुत गरीबी है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा युवा काम करने का इच्छुक है तो उत्तराखंड में इतनी बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत साधन हैं। जैसे आजकल पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांस हमारे लिए एक ऐसा है जो हमें रोजगार प्रदान कर रहा है, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो जिन लोगों ने ITI की है या कंप्यूटर बेसिक कोर्स किया या कंप्यूटर में कोई भी कोर्स किया है, तो उनको हम उसी गांव में उसको मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। एक तो ये हुआ कि उनको अपने गांव में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, और हल्का फुल्का उनको अपने आय का साधन मिला, और दूसरा ये फ़ायदा हुआ कि जो वहां के बेरोजगार युवा वर्ग है उसको एक ट्रेनिंग अपने गाँव में मिले। आपके कंप्यूटर की ट्रेनिंग हुई, आपके हार्डवेयर की ट्रेनिंग हुई, सिलाई की ट्रेनिंग हुई, ब्यूटी कल्चर की ट्रेनिंग हुई, दूसरा डिजाइनिंग का कोर्स करवाते हैं जिसमें कि हमारी महिलाएं यहाँ पे आके अपना आप सॉल पे डिजाइनिंग करके पर सॉल के हिसाब से 30-40 रुपए के हिसाब से हम लोगों से भुगतान भी लेती है। अगर हम किसी व्यक्ति को स्वरोजगार के प्रति जोड़ रहे हैं तो स्वरोजगार में ये है कि वो अपना रोजगार किस तरह से करें। अगर कोई गारमेंट बनाता है, स्वेटर बनाता है, शॉल बनाता है, पंखी बनाता है, दस्ताने बनाता है, कुछ भी बनाता है, तो मार्केटिंग की सुविधा हाईफीड में उपलब्ध है। और दूसरा हमारे पास सिरिधान का है, तो सिरिधान एक ऐसी स्कीम है जिसके जहाँ पे आज हमारा उपज किस तरह से बढ़े। आज कोई भी किसान है, मेन है हम लोगों को कृषि पे हम लोगों को विशेषतर युवा वर्ग का ध्यान हट रहा है। इसलिए हट रहा है क्योंकि हमें अच्छी उपज नहीं मिल पाती, अच्छी उपज इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि समय पे बारिश नहीं हो जाती, कभी ओले गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, और जब हमारी फसल तैयार हो जाती है कभी रोड ब्लॉक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इसलिए युवाओं का ध्यान है कि चलो हम दिल्ली जाके बम्बई जाके चाहे 2,000 महीना ही हम कमाएं उसी में संतुष्ट कर लेते हैं, तो एक सिरिधान भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। अगर इस योजना के तहत हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो ये हम लोगों के लिए और विशेषतर से जो सिंचित खेत है उनके लिए एक उपलब्धि सी हम लोगों के लिए प्रदान हो जाएगी।
तो दोस्तों सुना आपने, रोजगार के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं।
अब सुनते हैं एक ऐसी महिला की आप बीती जिन्होंने गांव से दिल्ली आकर यहां अपना काम शुरू किया। ये है हमारा अगला सेगमेंट कुछ विश्वास।
मेरा नाम चेता है।
आप जब यहाँ दिल्ली आए थे तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी आपको यहाँ आने में?
यहाँ पर ना तो लाइट था, ना पानी था, बत्ती बाल के बच्चों ने पढ़ाई करी और हम लोगों ने हाथ के पंखा से हमने गुजारा करा। बहुत गरीबी आ गई थी जब, तो मैं घूमते घूमते अपनी सहेली से पूछा और सहेली ने मेरे को राह बताई। फिर मैं घर में आके मैंने अपने पति से कहा कि ये पति ऐसे करेंगे कि तुम ऐसे करो, सामान लाओ हम यहाँ पर बेचेंगे। और आज मैं अच्छी स्थिति में हूँ, अच्छे में खा रहा हूँ, अच्छे मेरे बच्चे भी ठीक ही है। मैंने 20 रुपये से ये दुकान खोली और बहुत गरीबी निभाई। हमने नमक में अपने गुजारा करा उसी में से 10 पैसे जोड़ के अपने दुकान खोल, न तो लोन लिया न तो हमने किसी से उधार लिया, अपने जो 4 कमाया 2 हमने जमा करा और 50 पैसे हमने खाया। अपने हाथों से मैंने सब काम किया, मैंने किसी का सहारा नहीं लिया और न किसी ने दिया। जो भी मजबूरी आई मैंने खुद निभाया। मेरे एक लड़के का दोनों टांग एक्सीडेंट हुए, मेरे उसका वहाँ से भी कोई सहारा नहीं मिला। मैं अपने जो विपत है अपने परेणी में रखा है, अपने हाथों से जो अठनी थी उसकी चवनी खाना खाया और चवनी मैं अपने बच्चों को पाला। बिजनेस बराबर कोई नौकरी नहीं है, पर यह है कि मेरी यहाँ पर जगह जो है, मेरी संगत, मेरी व्यवहार, जो पड़ोसी है, ये सही नहीं है। अगर कोई अच्छी जगह मिल जाए तो आमदनी बहुत अच्छी है।
तेरी कुटुंब दर पलेणी चा या मेरी दुई टका की नौकरी मां, तेरी कुटुंब दर पलेणी चा। मेरी को कमाई तुए तनी दिखेणी चा, मेरी को कमाई तुए तनी दिखेणी चा, दिखेणी चा, दिखेणी चा। या मेरी दुई टका की नौकरी मां, तेरी कुटुंब दर पलेणी चा।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चले शहर की ओर। नरेन, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपना अगर कोई काम शुरू किया जाए तो उसमें सफलता की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एक तो वहाँ लोगों के पास काम शुरू करने के लिए धन होता है और दूसरा वहाँ पर काम चलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन गांवों में भी तो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं ना, और अगर उनके पास धन का अभाव हो तो वो लोग उसके लिए क्या करें और कैसे काम की शुरुआत करें?
भाई ये बात तो हमें भैजी ही बता सकते हैं।
तो ठीक है, बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भैजी।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
आज माजरा क्या है, किस दुविधा में पड़े हो दोनों?
दरअसल भैजी, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, पैसे के अभाव में कर नहीं पाते, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
नरेन, तुमसे ये किसने कह दिया कि आज के समय में इंसान पैसों के अभाव में काम शुरू नहीं कर सकता?
तो क्या भैजी बिना पैसों के काम शुरू हो सकता है?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
तो फिर
एक मिनट, पहले जरा पोटली देख ले। ये निकला है सुझाव अरविंद बिष्ट का। लिखते हैं कि अगर लोगों को काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत हो तो वो बैंक से ऋण ले सकते हैं।
हाँ भाईजी, ले तो सकते हैं, पर उन्हें काम भी तो निश्चित करना चाहिए ना।
बिल्कुल सही नरेन। अरे अरविंद भाई, आपने काम के बारे में तो सोचा ही नहीं और लोगों को पहले ही नसीहत दे डाली कि ऋण ले लीजिए और उनको बैंक भेज दिया। लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें करना क्या है तो ऋण लेकर क्या करेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। अब देखो, बड़ा सा बटुआ है अंजलि के पास, बहुत सारा पैसा है, लेकिन ये नहीं मालूम कि करना क्या है, तो फिर पैसों का क्या फायदा।
क्या भैजी, मुझे तो मालूम है कि मुझे इन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा हार खरीदना है।
यही तो बात है कि आपको पता होना चाहिए कि किस मकसद के लिए आपको पैसे चाहिए। जैसे तुम्हें हार चाहिए
जी,
तब तुम ये भी सोचोगी कि हार कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कहाँ कम में मिलेगा, वहाँ तक जाया कैसे जाए, मम्मी पापा को ले जाए या किसी और को ले जाए। कोई भी काम शुरू करने से पहले ये निश्चित कर लीजिए कि क्या काम करना है और उससे जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठा कर लीजिए, ताकि बाद में आपके बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो अंजलि
जी,
अब पता चल गया कि लोगों को पैसों के अभाव को देखने से पहले क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए।
जी बिल्कुल भैजी।
तो भैजी, आप यहाँ आए और हमारे दोस्तों को ये सब बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों, भैजी ने तो आपको बता दिया कि काम शुरू करने से पहले ये निश्चित कर लें कि आपको क्या काम करना है, काम कहाँ शुरू करना है और काम कैसे करना है। रही बात पूंजी की, तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं अपने अगले सेगमेंट काम की बात में।
अगर आप अपना कोई व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने निकटतम बैंक में जाकर या फिर वहां फोन करके संपर्क कर सकते हैं। वहां के कार्यकारी अधिकारी से बात करके उचित ऋण का चुनाव करें, साथ ही उस बैंक द्वारा ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज, ऋण संबंधी शर्तों और नियमों को जान लें और उनकी अन्य बैंकों से तुलना करें।
और अगर आप उत्तराखंड के किसी गांव में रहते हैं तो भी आप स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने निकटतम ग्रामीण बैंक से संपर्क करना होगा। आप वहां से अपना काम शुरू करने के लिए 25,000 से 50,000 रुपए तक की राशि उचित ब्याज पर प्राप्त कर सकते हैं।
स्वरोजगार से जुड़ी और ऋण संबंधी अन्य जानकारियों के लिए आप देहरादून स्थित ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय में भी बात कर सकते हैं। वहां का पता है 18 न्यू रोड देहरादून।
आप चाहें तो वहां पर फोन भी कर सकते हैं। वहां का फोन नंबर है 0135271060, यानी 0135271060 और 2710661, यानी 2710661।
और अगर आप इसके अलावा भी इस संबंध में और कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें SMS करें। नंबर है 9197178223, यानी 9197176782 23। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जरूरत की हर जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाए।
तो दोस्तों, उम्मीद है ये तमाम जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
तो ये तो थी काम की बात, और अब जरा बात हो जाए आज की चिट्ठी की।
नरेन, चिट्ठियों की बात नहीं होती, चिट्ठियाँ पढ़ी जाती हैं।
अरे वाह, आखिर ये चिट्ठियाँ भी तो हमारे श्रोताओं का हमसे बात करने का एक जरिया ही है, और उन्हें पढ़कर हम श्रोताओं की बातों का जवाब ही तो देते हैं।
ओके बाबा, मैं जीती तुम हारे, बस
वो तो हमेशा होता है। एक मिनट, अभी क्या कहा तुमने?
कुछ नहीं, चलो चिट्ठी पढ़ते हैं। और ये चिट्ठी है विक्रोली पूर्व मुंबई से विकास तिवारी जी की। विकास एक प्रवासी हैं और इनकी उम्र सिर्फ 14 साल है। और बहुत खूबसूरत सी चिट्ठी के साथ साथ इन्होंने एक बहुत प्यारी सी ड्राइंग भी बनाकर भेजी है। देखो नरेंद्र, जरा ऊपर क्या बना हुआ है। कभी लगता है कि शायद ये मधुमक्खी है, कहीं लगता है ये बटरफ्लाई है, कभी लगता है कि ये मकड़ी है, जो भी है, लेकिन है बहुत खूबसूरत।
हाँ, ड्राइंग तो खूबसूरत है।
और ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है अपनी नानी को। लिखते हैं कि पूजनीय नानी जी, मैं आपका नाती विकास तिवारी आपको सादर प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले अपने अमूल्य शरीर की हिफाजत करना, बाद में अन्य कार्य है। क्या बात है, शुरू में ही नसीहत। आगे लिखते हैं कि मैं यहाँ पर भगवान की असीम कृपा से माताजी व पिताजी के साथ कुशल से हूँ और भगवान से आपके लिए वहाँ कुशल रहने की कामना करता हूँ। नानी जी, पत्र लिखने का खास कारण यह है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ और नानी जी, मुझे बहुत खुशी हुई और आपका आशीर्वाद मेरे साथ था। नानी जी, आपकी बहुत याद आ रही थी। आजकल गांव में चुली पक गई होगी, उसकी भी बहुत याद आ रही है। जब आप तोड़ तोड़ कर मुझको खिलाती थी नानी जी, मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं आपके साथ गाय चराने जंगल में जाता था और आपके साथ खेत खलिहान में आपकी मदद करता था। नानी जी, सुबह उठकर जब मैं अपने गढ़वाल की डांडी काठी का वो निराला दृश्य देखता था तो मेरा मन मोहित हो जाता था। मैं वो दृश्य और आपकी ममता को भूल नहीं पाता हूँ। अगले साल मैं गांव आ रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी नाती, विकास तिवारी।
सचमुच अंजलि, विकास ने मुझे भी पहाड़ों की याद ताज़ा करा दी। वो खूबसूरत नज़ारे, वो दादी का प्यार, कितना मजा आता था वहाँ।
बिल्कुल नरेन। और चलो अब सुनते हैं आज के खट्टे मीठे संदेश जो हमारे दोस्तों ने हमारे कार्यक्रम के जरिए अपने परिवारों के लिए भेजे हैं।
मेरा नाम हीरा सिंह बिष्ट है। मैं ग्राम एरोड का रहने वाला हूँ जो रानीखेत से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, उत्तरांचल। मैं इस संदेश को अपने मम्मी के लिए भेज रहा हूँ। मैं मम्मी, यहाँ पर ठीक ठाक हूँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। थोड़ी सी मम्मी परेशानी होने की वजह से इस महीना मैं पैसा नहीं भेज पाया, तो नेक्स्ट अगले महीने मैं भेज दूंगा। और आप अपना ख्याल रखना। भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप सदा खुश रहें।
मेरा नाम अर्जुन है, मेरे गांव का नाम कुल्ली है। यह संदेश मैं अपने दोस्त के लिए भेज रहा हूँ जो कि रुद्रप्रयाग में रहता है। मेरा दोस्त का नाम नरेंद्र है। दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया, नाराज मत होना क्योंकि मेरे को छुट्टी नहीं मिली।
मैं परमिला दिल्ली की दोई नगर से बोल रही हूँ। मैं ग्राम ढान पौड़ी में अपने मम्मी पापा को नमस्ते। मम्मी, काम ज़्यादा मत करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, आपकी बहुत बहुत याद आती है।
मैं उषा दिल्ली की दोई नगर से बोल रही हूँ। मैं डुमेला तल्ला पौड़ी गढ़वाल के चाचा व चाची को नमस्ते बोलती हूँ। मेरे छोटे भाई बहनों को प्यार। चाची, ज़्यादा काम मत करना, अपने शरीर का ध्यान रखना।
तो दोस्तों, हमने अपना वादा पूरा किया, आपके संदेश आपके घरों तक पहुंचा दिए। उम्मीद है आपके परिवार वालों को भी आपके संदेश मिल गए होंगे और उन्हें आपके ये संदेश सुनकर काफी अच्छा लगा होगा।
और अगर आप भी अपना कोई संदेश हमारे प्रोग्राम के जरिए अपने परिवारों तक पहुंचाना चाहते हैं तो अपना नाम और पता हमें SMS कर दीजिए। हमारा नंबर है 9197176782 यानी 9197176782 हमारे सामुदायिक संवाददाता आपके पास आएंगे और हम उन संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
दोस्तों, अब तक आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम जब चलें शहर की ओर, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और अगर आप में से भी कोई गांव से शहर आया है और अपने अनुभवों को हमारे साथ बांटना चाहता है तो हमें अपने नाम, पते और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जरूर लिख भेजिएगा, क्योंकि उन पत्रों को हमारे कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और पत्र भेजने वाले को दिया जाएगा एक आकर्षक इनाम।
अपने सभी प्रवासी श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि आप मिलजुल कर एक क्लब की स्थापना कीजिए और उसमें होने वाली गतिविधियों से चिट्ठी लिखकर हमें भी अवगत कराइए। पसंद आने पर आपकी उस चिट्ठी को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
हमारा पता है,
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर में सहयोग के लिए हम अपने सहयोगियों मंदाकिनी की आवाज, हेवलवाणी और दिल्ली और मुंबई के अपने सभी सामुदायिक संवाददाताओं के आभारी हैं।
और श्रोताओं, हम आपको ये भी बता दें कि ये कार्यक्रम इक्वल एक्सेस और फोर्ड फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन याद रखिए, आपकी चिट्ठियों और SMS का हमें हमेशा बेसब्री से रहेगा इंतजार,
क्योंकि इसी के जरिए आप हमें भेजते हैं अपना प्यार।
हम शामिल करेंगे आपकी चिट्ठियों और संदेशों को अपने कार्यक्रम में
जिसका नाम है जब चलें शहर की ओर। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।
जब चले शहर की ओर।